नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9 Nut Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। डेटा फेमिनिज्म, कैथरीन डी इग्नाजियो और लॉरेन क्लाइन की लिखी हुई डेटा तकनीक और दृश्य प्रस्तुति पर एक आलोचनात्मक गैर कथा पुस्तक है। यह मानकर चलती है कि डेटा कभी पूरी तरह निष्पक्ष कच्चा तथ्य नहीं होता। कौन सा प्रश्न पूछा गया, किसकी जानकारी दर्ज हुई, किन लोगों को वर्गों से बाहर रखा गया और निष्कर्ष किस रूप में दिखाया गया, इन सभी निर्णयों में शक्ति काम करती है। पुस्तक का उद्देश्य डेटा विज्ञान को अस्वीकार करना नहीं, बल्कि उसे अधिक जवाबदेह, समावेशी और न्यायपूर्ण बनाना है। लेखिकाएं इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म के माध्यम से लिंगों, नस्ल, वर्ग, विकलांगता, भूगोल और अन्य सामाजिक असमानताओं से जोड़कर देखती है। इसलिए यह केवल महिलाओं के बारे में अधिक आंकड़े जुटाने का प्रस्ताव नहीं देती। यह डेटा बनाने वाली संस्थाओं, उनकी प्राथमिकताओं और उन लोगों की भागीदारी पर सवाल उठाती है जिनके जीवन को डेटा प्रभावित करता है। डेटा विजुअलाइजेशन, सार्वजनिक नीति, पत्रकारिता और शोध में काम करने वालों के लिए यह डेटा को शक्ति और संबंधों के ढांचे में समझने का उपयोगी आधार प्रदान करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डेटा को निष्पक्ष तथ्य नहीं, शक्ति के साधन के रूप में देखना। पुस्तक का मूल तर्क है कि डेटा शक्ति है, इसलिए डेटा से जुड़े निर्णयों को राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। प्रचलित धारणा यह है कि आंकड़े अपने आप बोलते हैं और गणना व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को हटा देती है। डी इग्नाजियो और क्लाइन इस धारणा को चुनौती देती है। डेटा संग्रह से पहले ही कोई संस्था तय करती है कि समस्या क्या है, किन श्रेणियों का उपयोग होगा, किसे गिना जाएगा और किसे नजरअंदाज किया जा सकता है। बाद में मॉडल, रिपोर्ट और चार्ट उन्हीं आरंभिक विकल्पों को अधिक अधिकारपूर्ण रूप दे सकते हैं, इसीलिए केवल बेहतर तकनीकी शुद्धता पर्याप्त नहीं है। प्रश्न यह भी है कि किसी डेटा परियोजना से लाभ किसे मिलता है, जोखिम कौन उठाता है और निर्णय करने का अधिकार किसके पास है। पुस्तक डेटा विश्लेषक को अपने काम की सीमाएं, वित्त पोषण, संस्थागत लक्ष्य और संभावित नुकसान पहचानने के लिए कहती है। यह दृष्टि डेटा को त्यागने के बजाय उसके पीछे के अधिकार संबंधों को स्पष्ट करती है। इसका व्यावहारिक परिणाम यह है कि किसी भी डैशबोर्ड या नीति सूचकांक को अंतिम सत्य मानने से पहले उसके निर्माण की प्रक्रिया, अनुपस्थित समूहों और उपयोग के परिणामों की जांच की जाए। दूसरा, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म से असमानताओं की परतों को समझना। डेटा फेमिनिज्म में फेमिनिज्म का अर्थ केवल पुरुष और महिला के बीच औसत अंतर मापना नहीं है। पुस्तक इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म से प्रेरणा लेती है, जो बताता है कि लिंग का अनुभव नस्ल, वर्ग, जातीयता, विकलांगता, नागरिकता, उम्र और स्थान जैसी स्थितियों से जुड़ा होता है। एक ही व्यापक श्रेणी के भीतर लोगों की स्थितियां बहुत अलग हो सकती है, इसलिए कुल औसत कई बार उस असमानता को छिपा देता है जिसे डेटा परियोजना समझना चाहती है। लेखिकाओं का आग्रह है कि शोधकर्ता पूछे कि किसी श्रेणी के भीतर कौन सबसे अधिक प्रभावित है और किसकी स्थिति आंकड़ों में धुंधली हो रही है। फिर भी वे केवल अधिक से अधिक विभाजित आंकड़े बनाने का सरल समाधान नहीं देती। छोटी आबादियों के लिए विस्तृत डेटा गोपनीयता, निगरानी और गलत पहचान के खतरे भी बढ़ा सकता है। अतः विभाजन का निर्णय समुदाय की सुरक्षा और उद्देश्य को ध्यान में रखकर होना चाहिए। यह ढांचा डेटा कार्य को अधिक कठिन लेकिन अधिक ईमानदार बनाता है। यह बताता है कि असमानता कोई अलग अलग खाने में रखी समस्या नहीं, बल्कि परस्पर जुड़ी व्यवस्थाओं का परिणाम है। इसी कारण समाधान में भी प्रभावित लोगों की आवाज और स्थानीय ज्ञान को जगह चाहिए। तीसरा, अदृश्य श्रम और अनुपस्थित ज्ञान को डेटा की समस्या मानना। पुस्तक उन कामों और ज्ञान रूपों पर ध्यान देती है जिन्हें डेटा आधारित व्यवस्था अक्सर गौण मानती है। देखभाल, घरेलू श्रम, सामुदायिक संगठन, भावनात्मक सहयोग और स्थानीय अनुभव जैसे योगदान हमेशा औपचारिक रिकॉर्ड में नहीं आते। जब कोई चीज मापी नहीं जाती, तब संस्थाएं उसे कम महत्वपूर्ण समझ सकती है और संसाधनों के बंटवारे में उसे पीछे कर सकती है। लेकिन लेखिकाओं का बिंदु केवल यह नहीं कि हर अनुभव को तुरंत संख्या में बदल देना चाहिए। कुछ अनुभवों को दर्ज करने से लोगों की निष्ठा, सुरक्षा या गरिमा को नुकसान हो सकता है, इसलिए डेटा की कमी को हर बार तकनीकी विफलता मानना भी गलत है। कभी अनुपस्थिति ऐतिहासिक उपेक्षा का परिणाम होती है और कभी लोगों की रक्षा के लिए सीमित दस्तावेजीकरण उचित होता है। इस भेद को समझना डेटा फेमिनिज्म की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह विश्लेषक को पूछने के लिए प्रेरित करता है कि किसका श्रम दिखाई दे रहा है, किसकी विशेषज्ञता को विश्वसनीय माना जा रहा है और किसके अनुभव को प्रमाण मानने के नियमों से बाहर कर दिया गया है। बेहतर अभ्यास में समुदायों के साथ संवाद, गुणात्मक साक्ष्य का सम्मान और डेटा संग्रह की स्पष्ट सहमति शामिल होती है। इस तरह पुस्तक केवल रिक्त स्थान भरने की नहीं, जिम्मेदारी से सुनने और दर्ज करने की मांग करती है। चौथा, डेटा विजुअलाइजेशन में पैमाने, तुलना और भ्रम की जिम्मेदारी। डेटा फेमिनिज्म विजुअलाइजेशन को सजावटी अंतिम चरण नहीं मानती। चार्ट, नक्शे और डैशबोर्ड यह तय करते हैं कि दर्शक किस अंतर को महत्वपूर्ण समझेगा और किस समस्या को सामान्य मानेगा। इसलिए दृश्य रूप चुनना भी नैतिक और राजनीतिक निर्णय है। उदाहरण के लिए, रंगों से राज्यों में कुल मामलों को दिखाने वाला कोरोप्लेप नक्शा अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को अधिक गंभीर दिखा सकता है। भले ही वहां प्रति व्यक्ति दर कम हो, ऐसा नक्शा आवश्यक रूप से झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसका पैमाना दर्शक को भ्रामक तुलना की ओर ले जा सकता है। पुस्तक का व्यापक समक है कि कुल संख्या, दर, समय सीमा, भौगोलिक इकाई और वर्गीकरण के प्रभाव को समझे बिना आकर्षक ग्राफ भी गलत अर्थ पैदा कर सकता है। लेखिकाएं स्पष्ट संदर्भ, स्रोतों की जानकारी, अनिश्चितता की स्वीकारोक्ति और प्रभावित लोगों के प्रति सावधानी पर बल देती है। इसका अर्थ हर चार्ट को अत्यधिक जटिल बनाना नहीं है, उद्देश्य यह है कि सरलता के नाम पर महत्वपूर्ण असमानताएं या सीमाएं ना मिटें। डेटा संप्रेषक को यह भी सोचना चाहिए कि दृश्य प्रस्तुति किस दर्शक तक पहुंचती है, किन लोगों के लिए सुलभ है और क्या उसकी भाषा समस्या को केवल आंकड़े में बदल देती है। इस दृष्टि से अच्छी विजुअलाइजेशन स्पष्ट होने के साथ जवाबदेह भी होती है। अंत में, निष्पक्षता के दावे के बजाय जवाबदेह और सामूहिक डेटा अभ्यास पुस्तक डेटा कार्य में निष्पक्षता के पारंपरिक दावे पर पुनर्विचार करती है। पूर्ण तटस्थता का दावा कई बार विश्लेषक के अपने चयन, संस्था के हित और उपलब्ध डेटा की सीमाओं को अदृश्य बना देता है। इसके स्थान पर डेटा फेमिनिज्म जवाबदेही का आग्रह करता है। इसका अर्थ है अपने दृष्टिकोण को पहचानना, तरीकों और सीमाओं को बताना तथा गलती या नुकसान की स्थिति में सुधार के लिए खुले रहना। लेखिकाएं शक्ति को केवल नकारात्मक नियंत्रण के रूप में नहीं देखती, वे सामूहिक क्षमता और सहयोग के महत्व को भी सामने लाती है। डेटा परियोजनाएं तब अधिक जिम्मेदार हो सकती है जब वे प्रभावित समुदायों को केवल सूचना के स्रोत के रूप में नहीं, प्रश्न तय करने और निष्कर्ष समझने में सहभागी माने। यह भागीदारी प्रतीकात्मक सलाह तक सीमित नहीं होनी चाहिए। समुदाय को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि डेटा किस उद्देश्य से लिया जा रहा है, कौन उसका उपयोग करेगा और संभावित जोखिम क्या है। साथ ही पुस्तक डेटा विज्ञान के इतिहास और विशेषज्ञता के दायरे को विस्तृत करने का आग्रह करती है, ताकि लंबे समय से उपेक्षित विद्वानों, कार्यकर्ताओं और समुदायों से सीख ली जा सके। यह ढांचा किसी एक तैयार चेकलिस्ट का विकल्प नहीं देता, बल्कि यह हर परियोजना में संबंध, संदर्भ, देखभाल और उत्तरदायित्व पर लगातार विचार करने की कार्यपद्धति प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष में, डेटा फेमिनिज्म उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो डेटा को केवल तकनीकी कौशल के रूप में नहीं देखना चाहते। डेटा वैज्ञानिक, विजुअलाइजेशन डिजाइनर, पत्रकार, शोधकर्ता, शिक्षक, नीति निर्माता और नागरिक समाज के कार्यकर्ता इससे लाभ ले सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि डेटा निष्पक्षता की गारंटी देता है, उनके लिए यह पुस्तक उस धारणा की जरूरी जांच कराती है। वहीं अनुभवी पेशेवरों के लिए यह परियोजना के आरंभिक प्रश्नों, श्रेणियों, साझेदारियों और संप्रेषण के तरीकों पर पुनर्विचार का ढांचा देती है। इसका व्यावहारिक लाभ किसी जटिल गणितीय विधि में नहीं, बल्कि बेहतर प्रश्न पूछने में है। किसे गिना गया, कौन छूटा, किसे जोखिम है और निर्णय में किसकी आवाज शामिल है, ये प्रश्न अधिक जिम्मेदार डेटा अभ्यास की दिशा देते हैं। समान विषय की कई पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान यह है कि यह डेटा नैतिकता को केवल निष्ठा, पक्षपात या एल्गोरिदम तक सीमित नहीं करती। यह इतिहास, श्रम, प्रतिनिधित्व, दृश्य भाषा और सामूहिक कार्रवाई को एक साथ जोड़ती है। साथ ही यह केवल आलोचना में नहीं रुकती, बल्कि डेटा के साथ अधिक देखभालपूर्ण और जवाबदेह संबंध बनाने का आग्रह करती है। पुस्तक के सभी समाधान तुरंत लागू होने वाले सूत्र नहीं है, और यही इसकी बौद्धिक ईमानदारी है। यह पाठक को निश्चित उत्तर देने के बजाय संदर्भ के अनुसार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं, कैथरीन डी एन 039 इग्नाजियो, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।